أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ 3 دقیقے در قیامت جو فارسی کتاب ہے، یعنی قیامت کے 3 منٹ، اس کتاب کا یہ چوتھا پارٹ ہے، چوتھا لیکچر ہے، جس میں یہ جناب اس میز تک پہنچتے ہیں جہاں پر نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نوجوان ایک بہت ہی موٹی کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ جب یہ جناب اس کتاب کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یہ کتاب تمہاری ہی کتاب ہے، کھولو اور پڑھو، آج حساب کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی کتاب کو خود سے پڑھو. تو یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ کتنا جانا پہچانا جملہ ہے کہ ہمارے استاد جب ہم قرآن کی کلاس میں جایا کرتے تھے تو وہ بارہا ہم سے یہ آیت کی تلاوت کر کے اشارہ کرتے تھے. وہ آیت اس طرح سے ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک الحسیبہ، یعنی آج تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی کتاب کو پڑھو اور یہ تمہاری حساب داری ہوگی. میں کچھ دیر کتاب کو دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے کتاب کھولی تو کتاب کے دائیں طرف سب سے اوپر کی اور لکھا ہوا تھا، 13 سال 6 مہینے اور 4 دن. تو ان جناب نے پوچھا، یہ کیا عدد لکھا ہوا ہے، یہ کیا نمبر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ جو شخص جوان میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ وہ تاریخ ہے جب تم اپنے بلوغ پر پہنچے تھے، یعنی تمہیں بلوغ حاصل ہو چکا تھا. لیکن یہ جناب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت کلیئرلی یہ تھا کہ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ 15 سال سے کم ہے، یعنی میں جب میرے حساب سے بلوغ پر پہنچا تھا یہ تاریخ اس سے کم تھی. اور وہ میرے دماغ کو پڑھنے لگا، اور اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ بلوغ کی نشانیاں فقط وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں ہیں، بلکہ بلوغ کی نشانیاں دوسری بھی ہیں، اور یہ وہی دقیق تاریخ ہے جب تم بالغ ہو گئے تھے. میں یہ ان کی بات سن کر چپ ہو گیا. اور اس پیج کے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک صفحے پہ بہت سارے نیک اور خوب اعمال لکھے ہوئے تھے، جس میں والدین کا احترام کرنا، زیارت پر جانا، نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا، مراسم میں شرکت کرنا، مجلس میں جانا، قرآن پڑھنا اور کئی ایسی چیزیں. تو میں نے اس پیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ سارے وہ نیک اور خوب اعمال ہے جو تم نے بلوغ سے پہلے انجام دیے تھے، اور یہ سارے اعمال یہاں پر ثبت کیے گئے اور محفوظ ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ کتاب کھول کر ایسے اعمال جو بلوغ کے بعد میں نے انجام دیے ہیں اس کی حساب داری شروع کرے، اس نے کتاب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس جوان نے کہا کہ تمہاری نمازیں اچھی تھی اور ساری خوب تھی اور ان کو قبول کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم باقی کے اعمال کی بررسی کریں گے. جب اس نوجوان نے یہ کہا تو فوراً وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی چیز جو خدا نے میری امت پر واجب کی ہے وہ نماز پنجگانے ہیں، اور پہلی چیز جو خدا کی طرف ہمارے اعمال میں سے جاتی ہے وہ نماز پنجگانے ہیں، اور وہ پہلی چیز جس کے بارے میں میری امت سے حساب داری کی جائے گی اور حساب رسی کی جائے گی وہ نماز پنجگانے ہیں. بس خدا کا شکر کہ میری نمازیں خوب تھی. اور ہم پھر ہمارے آگے کے اعمال کی بررسی کرنا شروع کرتے ہیں. ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ بالغ ہونے سے پہلے میں نماز پڑھنا شروع کر چکا تھا، اور میرے ماں باپ نے میری بہت ہمت افزائی کی اور بہت سپورٹ کیا. اسی وجہ سے ہمیشہ میں مسجد میں حاضر رہتا تھا، اور میری تقریباً تمام نمازیں مسجد میں ہوتی تھی. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی میری صبح کی نماز قضا ہوئی ہوگی، اور خدا نخواستہ اتفاقاً اگر کبھی میری کوئی صبح کی نماز قضا ہو جاتی تو میں تا شام، تا مغرب، تا عشاء، تا شب میں بہت ہی ناراحت اور افسردہ اور بہت ہی افسوسناک حالت میں ہوتا. اور اسی وجہ سے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اتنی اچھی تربیت دی، میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور اس اہمیت کو میں بچپن سے ہی میرے ماں باپ سے سیکھا تھا، اور خدا کا شکر یہ اہمیت ہمیشہ میرے دل میں باقی تھی، اور اسی وجہ سے میری نماز مورد قبول ہوئی. جب وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے نماز کو اتنی اہمیت دی تو مجھے हमारे मासूमीन की हदीस याद आ गई कि पहली चीज़ जो जिसके बारे में हिसाब किया जाएगा वो नमाज होगी, और अगर नमाज कबूल हुई तो फिर बाकी के आमाल का हिसाब किताब होगा, और अगर नमाज कबूल ना हुई तो फिर बाकी के आमाल भी। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी नमाज मुरीद कबूल थी। और फिर पहला सफ़ा जब पलटाया गया, यानी वो पहला दिन मेरे बुलूग का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर तमाम मेरे आमाल उस दिन के लिखे हुए थे पूरे जुज़ियात के साथ, यानी पूरी डिटेल के साथ हर अमल को ज़ब्त किया गया था, और हर छोटे से छोटे काम को बहुत दकीक और बहुत प्रिसाइसली लिखा गया था, हर बारीक चीज़ को लिखा गया था, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया गया था। और जब मैंने इस सफ़े को देखा और देखा कि इसमें इतनी बारीकी से सारी चीज़ें लिखी गई है, तो फ़ौरन वो कुरान की आयत मेरे जहन में आ गई, फ़मन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी क्या, यानी हर चीज़ और हर अमल जो मैंने अंजाम दिया था वो सारा सब कुछ लिखा गया था, हत्ता जो मैंने मजाक किया था और जिन चीज़ों को मैंने मजाक में लिया था वो सारी चीज़ें भी पूरी बारीकी के साथ, पूरी दिक्कत के साथ लिखी गई थी। और इस पेज पे हर चीज़ के किनारे एक छोटी सी तस्वीर थी, उस तस्वीर में ये सारी चीज़ें, सारा आमाल जब्त किया हुआ था, बिल्कुल एक वीडियो की तरह जो आजकल के मोबाइल में पाई जाती है। एक छोटी सी तस्वीर, अगर उसे आप गौर से देखेंगे तो सारा तमाम आमाल आपने जो अंजाम दिया है वो बिल्कुल 3D फॉर्मेट में आपको नज़र आ जाएगा, और पूरी बारीकी और जुज़ियात के साथ, और इस कदर दकीक था कि उस आमाल में से आप किसी भी चीज़ का इनकार नहीं कर सकते। यानी इस सफ़े में हर चीज़ ना सिर्फ लिखी हुई थी बल्कि उस चीज़ का वीडियो भी जब्त किया हुआ था। और जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ना सिर्फ लोगों के किए हुए आमाल बल्कि उनकी फ़िक्रें और नीयतें भी वाज़े और मुशख्खस तौर से बहुत क्लियरली नज़र आ जाती है। यानी ये कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ये काम किया था लेकिन मेरी नीयत ये थी या मेरे जहन में ये फ़िक्र चल रही थी, यानी इतनी जुज़ियात और बारीकी के साथ सब कुछ लिखा गया था कि आप किसी बात का भी इनकार नहीं कर सकते, ना सिर्फ आमाल का इनकार नहीं कर सकते बल्कि आप अपनी फ़िक्रों का और नीयतों का भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं खुशहाल था क्योंकि बचपन से ही वालिद साहब के साथ मुकर्रर और मुस्तमर तौर पर मस्जिद जाया करता था, यानी बिल्कुल हर रोज़ मस्जिद जाता था और वहाँ पर लोगों की मदद करता था और वहाँ पर जो मरासिम बरगुजार होते थे उसमें शिरकत करता था। तो वो पेज, पहला पेज देखकर मैं ख़ुद पर इफ्तिखार करने लगा और ख़ुद पर मुझे थोड़ा गर्व होने लगा, और मैं सोचने लगा कि मेरे काम तो बहुत अच्छे हैं तो शायद मैं बहुत बेहतरीन जगह पर होंगा, और मेरे जहन में यह ख्याल आने लगा कि मैं अभी से बेहतरीन जन्नत के दर्जा को हासिल कर लूँगा। अभी मैं ख़ुद पर इफ्तिखार ही कर रहा था तब तक मैंने देखा कि इस सफ़े से मेरे आमाल धीरे धीरे एक एक कर कर मिटने लगे, और कुछ ही देर में ये पूरा पेज, पूरा सफ़ा बिल्कुल एक कोरे कागज़, सफ़ेद कागज़ जैसा हो गया। मैं परेशान हो गया, निगरान हो गया, और थोड़ा गुस्से में उस शख्स से पूछने लगा कि ये क्या हुआ, मगर मैंने ये अच्छे काम अंजाम नहीं दिए थे, फिर ये क्यों मिट गए, ये कहाँ चले गए। तो उस शख्स ने कहा, उस मलक ने कहा कि हाँ सही कहा तुमने, तुमने ये अच्छे आमाल अंजाम दिए थे लेकिन उसी दिन तुमने अपने एक दोस्त की गीबत भी की थी और इस वजह से ये तुम्हारे सारे अच्छे आमाल उसके नामे आमाल में चले गए। तो मैंने कहा क्यों, क्यों सारे आमाल चले गए। तो उसने मुझे गैर मुस्तकीम तरीक़े से इशारे करते हुए कहा कि पैगंबर की हदीस है कि जिस तेज़ी से आग सूखे पत्तों को जलाती है उससे भी कई ज़्यादा तेज़ी से गीबत तुम्हारे अच्छे आमालों को जला देती है और दूसरों के आमाल में मुंतकिल कर देती है। फिर हम दूसरी पेज की तरफ बढ़ें। इस पेज पर भी बहुत सारे नेक आमाल लिखे हुए थे, सारा पेज नेक आमाल से भरा हुआ था, जिसमें नमाज थी, अव्वल वक्त की नमाज थी, माँ बाप की खिदमत थी, माँ बाप की रिजायत थी, मरासिम थे, हैयत में जाना था और दिफाए मुकद्दस की तैयारी थी। उस जमान, वो जमान ज़माने दिफाए मुकद्दस था, यानी जंग चल रही थी, और उस दौरान तमाम बच्चे अच्छे कामों में लगे हुए थे और मैंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे, और सारे कामों की लिस्ट देखकर मुझे वो सारे काम याद आने लगे जो मैंने अंजाम दिए थे। और कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप समझ गए कि जैसे मैं इनकी तरफ देख रहा था फिर मैंने देखा कि ये धीरे धीरे मेरे आमाल सारे महव होने लगे और मिटने लगे। तो मैंने कहा, अब क्या हुआ, इस दिन तो मैंने किसी की गिबत नहीं की थी, फिर ये आमाल क्यों मिट रहे हैं, ये आमाल कहाँ जा रहे हैं। तो उस शख्स ने, उस मलक ने जो मेज़ के पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा कि इस दिन तुमने अपने एक मजहबी दोस्त का मसखरा उड़ाया और उसकी हंसी उड़ाई, और इस वजह से, क्योंकि ये तुमने बहुत ही ज़ेष्ट और पलीद आमाल अंजाम दिया है, तुम्हारे आमाल नाबूद हो गए। और बिना कुछ कहे फौरन मेरे जहन में सूरह यासीन की वो आयत को हाजिर किया गया, जिसमें ये मतलब था कि क़यामत का दिन वो लोग जो दूसरों का मसखरा उड़ाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा हसरत का दिन होगा। मैं समझ गया यह आयत किस तरफ इशारा कर रही थी। मैं बड़ा ही शौक़ इंसान था, यानी बहुत हंसी मजाक करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, दूसरों को सताने वाला, इस तरह का इंसान था। मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद था, मैं दूसरों को छेड़ता था, उनके साथ मस्ती करता था। फिर मैं सोचने लगा कि अगर वाकई ऐसा ही है कि हर हंसी मजाक के लिए, हर वो लहजा जब मैंने किसी और को सताया है, उसकी वजह से अगर मेरे आमाल सारे के सारे नाबूद होने वाले हैं, तो मेरी तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। इंशाल्लाह बाकी का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुनते रहिए और जितना मुमकिन है इससे सबक लीजिए, और देखिए इस शख्स की बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से इसके कितने बड़े बड़े आमाल इसके हाथ से चले गए। इंशाल्लाह पांचवें जलसे में आगे की दास्तान आपको बताता हूँ। तब तक के लिए इल्तिमा से दुआ, खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये पांचवा चैप्टर है इस किताब का, तीन मिनट क़यामत के। पिछले चैप्टर में हम इस बात पर, इस मौजू को तमाम किए थे कि उन्हें बहुत ताज्जुब होने लगा अपने आमाल को महव होते हुए, मिटते हुए देखकर, और वो सोचने लगे कि अगर ऐसे ही बात है कि अगर मैं हर मजाक करूं और इस मजाक से किसी का दिल दुखता है, तो फिर मेरे सारे आमाल मिटते जाएंगे और मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है। फिर जब मैं अगले सफ़े पर गया तो देखा कि वहाँ भी बहुत सारे अच्छे आमाल लिखे हुए थे और काफ़ी नेक आमाल मेरे सब्त किए हुए थे, लेकिन इत्तेफाकन इस पेज का मेरा कोई भी अमल पाक नहीं हुआ, कोई भी अमल मिटा नहीं। जबकि मैं देख रहा था कि इस पेज पर भी मेरे नाम से कई हंसी मजाक लिखे गए थे, लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा, दिक्कत से देखा, तो मैंने देखा कि ये जो मैंने हंसी मजाक की थी मेरे दोस्तों के साथ बैठकर, तो मैं उनके साथ मिलकर हंस रहा था, ना ये कि किसी की इहानत कर रहा था, किसी की तौहीन कर रहा था, किसी के ऊपर हंस रहा था, बल्कि हम सब मिलकर कुछ बातें कर रहे थे और आपस में हंस रहे थे। किसी का दिल दुखाया नहीं जा रहा था, किसी की गिबत नहीं हो रही थी, और इस हंसी मजाक में कोई गुनाह शामिल नहीं था। इसी वजह से ना सिर्फ ये हंसी मजाक लिखा गया और इसकी वजह से मेरे आमाल मेटे नहीं गए, बल्कि ये हंसी मजाक नेक आमाल के उनवान से लिखे गए थे। यानी ये कि ये हंसी मजाक भी एक तरीके की इबादत गिनी गई थी, और तभी मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ गई, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि नमाज बरपा करने के बाद सबसे बड़ा अमल यह है कि तुम एक मोमिन के दिल को शाद करो। और इस मौके पर हम सब जब मिलकर हंस रहे थे, तो हम सब जो मोमिन भाई थे, हम सब का दिल शाद था और इसमें कोई गुनाह शामिल नहीं था। इसीलिए यह हंसी मजाक भी एक नेकी की तरह, एक नेक अमल की तरह सब्त किया गया था। फिर जब अगला पेज पलटाया तो देखा कि वहाँ पर मेरे नाम से एक हज लिखा हुआ था, यानी मेरे लिए एक हज का सवाब लिखा हुआ था। मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आ गई और मैं इस लबखंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ उस मलक की तरफ मुतवज्जे होकर कहता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि मैं इस उम्र में मक्के गया था और कोई हज किया था, तो फिर मेरे नाम से हज का सवाब कैसे लिखा गया। तो उस मलक ने बताया कि कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसका सवाब कई हज के बराबर होता है, और शायद तुमने इनमें से कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जिसकी वजह से तुम्हारे नाम से हज लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जिनके लिए एक ऐसे अमल की वजह से चंद दिन बराबर हज लिखे जाते हैं, जैसे माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह करना, या फिर ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जाना, मारिफत के साथ अहलुल बैत की ज़ियारत करना, और इस तरह के आमाल बायस होते हैं कि तुम्हारे नाम पर हज का सवाब लिखा जाए। फिर मैंने देखा कि फिर मेरे जो अच्छे आमाल थे वो एक एक कर कर मिट रहे थे। अब तो मुझे कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं, कोई सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं। मैं खुद देख रहा था कि जब आखिर शब देर रात मैं और मेरे दोस्त जमा हो गए थे, हम एक दूसरे को सता रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, किसी अफराद के साथ मजाक करते हुए उसे सता रहे थे। और फिर मुझे वो सूरह ज़ुम्र की आयत याद आ गई कि जिसमें ये बयान किया गया है कि कुछ ऐसे आमाल तुम्हारे होते हैं जिनकी वजह से तुम्हारे नेक आमाल हप्त हो जाते हैं, नाबूद हो जाते हैं। और जब मेरे आमाल मिट रहे थे तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। तो दो जवान जो मेरे आसपास खड़े हुए थे, जो मेरे सीधे हाथ और दाहिने हाथ की तरफ, मैं उनकी तरफ पलटा और कहा, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? मेरे सारे आमाल इस तरह मिटे जा रहे हैं। तो उन दोनों ने अपना सर नाउम्मीदी वाले अंदाज से हिलाकर इशारा करते हुए कहा कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे खुद के आमाल है, तुमने खुद अपने हाथों से अपने आमाल को जलाया है। फिर मैं जैसे जैसे सफ़े पलटाता जाता तो देखता कि कई ऐसे आमाल जो बहुत अच्छे थे, जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत ज़हमत उठाई थी ताकि ये आमाल सख्त हो और इनकी मुझे नेकी मिले और सवाब मिल सके, देख रहा था कि कुछ मेरे ऐसे आमाल की वजह से एक एक करके ये सारे मिटते जा रहे थे। मेरी रूह पर बहुत ज़्यादा फिशार आ रहा था, बस ऐसे जैसे कि बस अभी मेरा दिल रुक जाएगा। देख रहा था कि मेरी सारी मानवीय सिरवत जो मैंने इस दुनिया में जहमत उठाकर, मेहनत उठाकर उस दुनिया के लिए भेजी थी, वो एक एक करके नाबूद होती जा रही थी, एक एक करके जलती जा रही थी। नहीं जानता था क्या करूँ, बस चाहता था कि मेरे आमाल बच जाए, महफूज रह जाए और हिफ्ज हो जाए। जितना भी मैंने मजाक किया, जितनी भी मैंने मस्ती की, जितनी भी मैंने हंसी उड़ाई और किसी का दिल दुखाया, तो देख रहा था कि इन छोटे छोटे बेमतलब मजाकों की वजह से मेरे इतने अच्छे आमाल मेरे परवंदे से, मेरे पेजेस से, मेरी किताब से निकलकर दूसरों की किताब में जा रहे थे और उनके नाम पर लिखे जा रहे थे। और इसी दौरान और एक बात की तरफ मेरी तवज्जो जाती है, मुतवज्जे हुआ कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे आमाल के सवाब कम होते जा रहे थे। जितनी नमाज जमात पढ़ी थी जो जवानी में पढ़ी थी, उनका सवाब बहुत ज़्यादा था। जो मजलिसें जवानी में अटेंड की थी, उनका सवाब बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, तो मेरे नमाज जमात का सवाब और मजलिसों का सवाब कम होता जा रहा था। तो मैंने फिर इस मलक से, जो इस मेज़ के पीछे, टेबल के पीछे बैठा हुआ था, उसको मैंने इशारा करके कहा कि मैं तो इन शबों में मजलिस जाया करता था, मस्जिद जाया करता था, इबादत किया करता था, फिर क्यों यहाँ पर सब्त नहीं हुआ, क्यों यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया गया, या फिर इतना कम सवाब क्यों लिखा गया, जबकि मैं उतने ही शिद्दत से मस्जिद और मजलिस जाया करता था। तो उस मलक ने इशारा करते हुए कहा कि ध्यान से देखो, खूब अच्छे से देखो कि जैसे जैसे तुम्हारा सन और साल बढ़ता गया, वैसे वैसे तुम्हारी रिया, खुदनुमाई और दिखावे वाले आमाल बढ़ते गए। पहले जब जवान थे तब खालिसाना और खुदा की खुशनुदी के लिए मस्जिद और मजलिस में जाया करते थे, बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो रिया के लिए मजलिस में जाया करते थे, रिया के लिए मस्जिद में जाया करते थे। मस्जिद में इसलिए जाया करते थे ताकि लोग तुम्हें देखें, मजलिस में इसलिए जाया करते थे कि अगर ना जाओ तो लोग पूछेंगे क्यों नहीं आए। अगर वाकई खुदा के लिए मजलिस और मस्जिद में जाया करते तो फलान मजलिस में क्यों नहीं गए जहां पर तुम्हारे दोस्त नहीं थे, फलान मस्जिद में क्यों नहीं गए जहां तुम्हारे जानने वाले नहीं थे, क्यों सिर्फ इन्हीं मजालिस और मस्जिद में जाया करते थे जहां तुम्हारे दोस्त आया करते थे। सूरह कहफ की 49वीं आयत मुझे याद आ गई कि जिसमें कहा जाता है कि उनकी आमाल की किताब उनके सामने रखी जाएगी, बस गुनहकारान और बदकारान देखेंगे अपने आमाल को, और तुम उनको पाओगे ऐसी हालत में जब वो बहुत डरे हुए होंगे और कहेंगे वाह हो हम पर, ये कैसी किताब है कि इसमें कोई भी आमाल, छोटे से छोटा आमाल भी किनार नहीं रखा गया, मगर इसके उसे सब्त किया गया है। और आमाल खुद के आमाल को देखेंगे, और परवरदिगार तुम में से किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। जैसे जैसे सफ़े पलटा रहा था तो देखा कि जो आमाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अर्जिशमंद और वैल्यू वाला था, वो सफ़े के सबसे ऊपर और बहुत बोल्ड में लिखा हुआ था। तो एक सफ़े पर मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि एक गरीब और फ़कीर खानवादे और फैमिली की मदद की है, बहुत बोल्ड में लिखा हुआ था। اور اس عمل کے جزیات اس فلم میں مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن اگر سچ پوچھو گے تو جتنا میں نے سوچا، جتنا میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس سے کسی خانوادے کی مدد کی ہے. یعنی میں چاہتا تھا کہ مدد کروں، اما میرے پاس اتنا مال نہیں تھا، میرے پاس مالی توانائی نہیں تھی کہ میں ان کی مدد کروں، اور وہ خانوادہ اور فیملی کی حالت بھی بہت بری تھی. میں انہیں اچھے سے جانتا تھا، وہ ہمارے ہمسائے تھے، ہمارے نیبرس تھے، اور ان کی مالی حالت بہت بری تھی، اور میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میرے پاس نہ اتنا مال تھا، نہ میرے پاس اتنی توانائی تھی. اسی لیے ایک دن میں گھر سے نکلا، اور جن لوگوں کو میں جانتا تھا اور وہ جو ان خانوادوں کو جانتے تھے، بازار میں تھے، دکان میں تھے، اور میرے رشتے دار تھے، ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو، یہ ایک فیملی ہے جو بہت غریب ہے اور جن کی مالی حالت بہت خراب، کیوں نہیں تم انہیں تھوڑی بہت مدد کر دو. جتنا میں ہو سکتا تھا اس فیملی کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا، اور چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں کی، نہیں سنی، بلکہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ بچے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ سب کام بڑے لوگ کرتے ہیں، ایسے کاموں میں مت پڑو. مجھے یاد ہے جب میں صرف 15 سال کا تھا، اور جب دیکھا کہ یہ لوگوں کی میرے ساتھ ایسی رفتار ہے، اور وہ میری بات کی کوئی ویلیو نہیں کرتے اور میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی زیادہ کوشش نہیں کی. لیکن عجیب بات تھی کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس فیملی کی مدد کی ہے، جبکہ میں نے نہیں کی. تو میں نے اس ملک کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ملک، تم تو جانتے ہو کہ میں نے اس فیملی کی مدد نہیں کی، پھر کیسے اس فیملی کے لیے لکھا گیا ہے کہ کیسے میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میں نے اس فیملی کی مدد کی ہے؟ تو وہ ملک کہتا ہے کہ تمہاری نیت تھی کہ تم مدد کرے، اور کیونکہ تمہاری نیت تھی اور اس نیت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، لیکن کوئی بات نہیں، تمہیں اس کا نتیجہ نہیں ملا، اس کا تمہیں حل نہیں ملا، تم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پائے، لیکن پھر بھی تم نے کوشش کی اور تمہاری نیت خالص تھی، اور اسی نیت اور یہ کوشش کی وجہ سے یہ عمل تمہارے عمل نامے میں ثبت ہوا ہے کہ تم نے اسے انجام دیا ہے. بعد میں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. نہج الفصاحہ میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وقتی میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں کر پاتا ہے، یا کسی وجہ سے کوئی معنی پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے پاتا ہے، تو میں اس کے نام سے ایک نیک اعمال اس کی کتاب میں ثبت کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جتنی میری فکر اور نیت جو اچھے کاموں کے لیے تھی، وہ تمام صفحوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ پیجز میں لکھی ہوئی تھی، ثبت کی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے اعمال جن کی میں نیت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا اور اس کام کو بجا لانے کے لیے قدم اٹھاتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اعمال انجام نہیں ہو پاتے تھے. شاید کوئی مشکل آ جاتی تھی یا کوئی اور مصلحت کی وجہ سے اگرچہ وہ انجام نہیں ہو پائے، لیکن کیونکہ میری نیت تھی اور اس عمل کے لیے میں نے حرکت کی تھی، تو یہ اعمال ثبت ہوئے تھے. اور خدا کا شکر کہ کوئی ایسی نیت جو گناہ کی یا نادرست نیت تھی، وہ ثبت نہیں ہوئی. تو میرے اچھے نیت اور حرکات ثبت ہوئے، اور ایسی نیت جو گناہ کے لیے تھی وہ ثبت نہیں ہوئی تھی. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اچھے اعمال چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیا میں، ان کی وجہ سے میرے اعمال، اچھے اعمال محو ہوتے جا رہے تھے. اور جیسے جیسے صفحے پلٹاتا جاتا اور آگے بڑھتے جاتا، تو دیکھتے جاتا کہ ایسی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے میرے بہت سارے اچھے اعمال مٹ رہے تھے، محو ہو رہے تھے. اس بات سے بہت ناراحت اور افسوسناک تھا، لیکن لاچار اور بیچارہ تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. بس افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں میں نے دنیا میں ایسے اعمال انجام دیے. انشاءاللہ آگے کی بحث 6th chapter میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. یہ 6th chapter ہے اس کتاب کا، 3 دقیقے قیامت کے. کل تک ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی نیت خالص ہوتی ہے، تو وہ اعمال آپ کے بچ جاتے ہیں، ثبت ہو جاتے ہیں، اور اگر نیت خالص نہیں ہوتی ہے اور خدا کے لیے انجام نہیں دیا، ریاکاری کے لیے انجام دیا، تو وہ اعمال ہبط ہو جاتے ہیں اور نلیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری کتاب سے میرے اعمال دھیرے دھیرے محو ہو رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، تو میں بہت ناراحت تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تب یہ ملک جو टेबल के पीछे बैठा हुआ था वो मुझसे कहता है कि अगर तुम अपने आमाल सिर्फ खुदा के लिए अंजाम देते हो तो इनकी कोई वैल्यू है, तो इनकी कोई अर्जिश है, लेकिन अगर किसी गैर खुदा के लिए रियाकारी करते हो, यानी थोड़ा सा भी अमल अपना गैर खुदा के लिए करते हो, तो वो सारा का सारा अमल सिर्फ उस शख्स के लिए ही अर्जिश रखता है, खुदा के लिए कोई अर्जिश नहीं रखता। मगर तुमने ये बात, तुमने ये कहावत नहीं सुनी, अल आमाल बिन्निया, यानि आमाल नियत से वाबस्तगी रखते हैं, जैसी तुम्हारी नियत है उतनी ही अर्जिश तुम्हारे आमाल की होगी। जैसे जैसे पेज पलटाता जाता और देखता जाता कि मेरे आमाल नाबूद हो रहे हैं, मेरे आमाल मिटे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी हिमाकतें की हैं, ऐसी बेवकूफ़ियाँ की है जिसकी वजह से मेरे अच्छे अच्छे आमाल नाबूद हो रहे थे, अचानक से देखा कि एक सफ़े के ऊपर बहुत ही मोटे अल्फाज में लिखा हुआ था, निजात एक इंसान, यानी एक इंसान को निजात देना, यानी एक इंसान की जान बचाना। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ये माजरा क्या था, और मैंने बहुत खुदा का शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो मैंने खालिसाने खुदा के लिए किया, क्योंकि ये काम मैंने वाकयान खुदा के लिए खालिसाने किया था। माजरा कुछ इस तरह था कि हम लोग तफरी के लिए गए थे हमारे दोस्तों के साथ, और वहीं अतराफ़ में एक नहर थी, और नहर में पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। अचानक हमने देखा कि एक छोटा बच्चा नहर में गिर गया है और पानी के बहाव से बहा जा रहा है, और अगर उसे किसी ने नहीं बचाया तो वो डूब जाएगा। तभी मैंने नियत की कि मैं जाऊंगा और इस बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया, कहा कि नहर का पानी बहुत तेज़ है, अगर तुम जाओगे तो शायद तुम भी डूब जाओगे, और शायद ये बचाने की जगह तुम्हारे मौत का सबब बन जाए, तो सोच समझ कर कदम उठाना। लेकिन मैंने देखा कि इस बच्चे का कोई मददगार नहीं था, तो मैं नहर के नज़दीक गया और मैंने खुदा से कहा, खुदाया सिर्फ़ तेरे लिए मैं अपने आप को ख़तरे में डाल रहा हूँ। और आप बहुत पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर मैंने तैर कर उस बच्चे के पास पहुंच गया और उसे बचाने की कोशिश की। मैंने इस बात की ट्रेनिंग ले रखी थी कि डूबते हुए को कैसा बचाया जाए, तो मैंने उस बच्चे को पकड़ा, थामा और अपने साथ खींच कर नहर के किनारे लेकर आया। बल्कि ये नहर नहीं, एक डैम था, और डैम के पास जो पानी जमा हुआ था वहाँ का माजरा था, और पानी का बहाव बहुत तेज़ था, मुमकिन था कि हम दोनों डूब जाए, लेकिन बहुत जद्दोजहद और कोशिश की वजह से मैं किनारे तक पहुँच सका और मेरे दोस्तों ने मदद की और हम दोनों को इस पानी से बाहर निकाला, और हम सब ने मिलकर इस बच्चे की जान को बचा लिया। इस बच्चे के माँ बाप वहीं नज़दीक थे, वो आकर बहुत खुश हो गए कि बच्चे की जान बच गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, बहुत तशक्कुर किया, और फिर हमने उनसे खुदाफिजी की और हम वापस अपने रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तब इस बच्चे के माँ बाप ने मुझसे मेरा नाम, पता और फ़ोन नंबर ले लिया था। जब मैं अपने आमाल को इस सफ़े पर लिखा हुआ देख रहा था कि एक इंसान को निजात दिया, तो मैं बहुत खुशहाल हो गया, क्योंकि एक अमल जो मैंने खालसाने खुदा के लिए अंजाम दिया था ये अच्छी तरह से यहाँ सब्त हुआ था। ऐसे मौके पर जब सारे आमाल महव हो रहे थे, सारे आमाल मिटे जा रहे थे और सारी बदबख्तियाँ मेरे सर पर फूट रही थी, ऐसे आमाल की बहुत सख्त ज़रूरत थी जहाँ पर एक अमल जो खालसाने अंजाम दिया वो मेरी मदद करे, वो मुझे निजात दे सके। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरा एक अमल बहुत ही अच्छे अंदाज में और मोटे अल्फाज में सब्त हुआ था। फिर अचानक मैंने देखा कि ये अमल भी धीरे धीरे मिटा जा रहा है। बहुत नाराहत हो गया, बहुत परेशान हो गया, और मलक से मुतवज्जे होकर कहने लगा कि मगर तुमने नहीं कहा था कि जो काम खालिसाने खुदा के लिए करते हो वो हमेशा हिफ्ज़ होता है, वो हमेशा सब्त होता है, वो कभी मिटता नहीं, फिर क्यों ये अमल मिटा जा रहा है? तो मलक ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि तुम सच कह रहे हो, जो काम खुदा के लिए खालिसाने किया जाता है और सिर्फ़ खुदा के लिए किया जाता है वो हमेशा हिफ्ज रहता है और मिटता नहीं है, लेकिन अगरचे तुमने ये काम शुरुआत में खुदा के लिए अंजाम दिया, लेकिन जब तुम रास्ते में घर जा रहे थे तो तुम्हारे फ़िक्र में क्या बातें चल रही थी, ये तो ज़रा सोचो, ये तो ज़रा देखो। तभी वो फिल्म मेरे सामने शुरू हो गई और मैं देख रहा था कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो मेरे जहन में क्या क्या बातें चल रही थी। मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि एक बहुत ही बड़ा काम मैंने अंजाम दिया है, एक बहुत ही ख़तरनाक काम मैंने अंजाम दिया है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर एक बच्चे की जान बचाई है। अगर मैं इन माँ बाप की जगह होता तो मैं जाकर सबको इस बात के बारे में बताता, और जाकर अखबार में बताता, और जाकर टीवी वालों को बताता, और जाकर इस शहर के मेयर को बताता, और मेयर भी एक अच्छा खासा मोटा हदिया और पैसे की रकम लाकर मुझे हदिया करता और मुझे रिवॉर्ड देता कि तुमने एक बच्चे की जान बचाई, वो भी अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए। बल्कि होना तो ऐसा चाहिए कि अखबार वालों को और टीवी वालों को मेरे पास आकर मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए कि मैंने कैसे इस बात की हिम्मत की कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर एक बच्चे की जान बचाई। ये काम कोई आसान काम नहीं था, कोई मामूली काम नहीं था, एक बहुत ही बड़ा, सख्त और संगीन काम था, और ये काम मैंने अंजाम दिया है, मैंने, तो मेरा तो नाम होना ही चाहिए। और फिर फिल्म में मैं ये देखता हूँ कि जो चीज़ों की मैंने नियत की थी, जो चीज़ों के बारे में मैंने सोचा, अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। माँ बाप ने जाकर इस शहर के मेयर को बताया, अखबार वालों को बताया, टीवी वालों को बताया, और मेयर आकर उसने मुझे एक बहुत मोटी रकम हदिये के तौर पर दी। अखबार वालों ने मेरी फ़ोटो निकाली और अखबार में ख़बरें छापी, टीवी वालों ने मेरी फ़ोटो निकाली और इंटरव्यू लेकर मुझे टीवी पर दिखाया गया। तो जो जो मैंने सोचा था वो सब कुछ अगले दिन हुआ। फिर वो मलक मेरी तरफ़ मुतवज्जे होकर कहता है कि तुमने शुरुआत में काम तो खुदा की रिजायत के लिए किया था, लेकिन बाद में अपने ही हाथों से इसे ख़राब कर लिया। दुनियावी रिवॉर्ड्स के पीछे पड़ गए, दुनियावी नेमतों को चाहते थे, दुनियावी मिकदार चाहते थे और पैसा चाहते थे, और तुम्हें ये सब मिला। दुनिया में तुम्हारा नाम, शोहरत, पैसा, तुम जो सब चाहते थे वो तुम्हें मिला। सच कह रहा हूँ या नहीं? जिसकी आरज़ू थी वो तुम्हें दुनिया में ही मिल गया। फिर मैंने कहा कि तुम सच कह रहे हो कि मैंने ही अपने हाथों से अपना काम ख़राब किया है, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे हाथ तो खाली हो चुके। तो वो मलक जो मेज़ के पीछे बैठा था उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब काम शुरू करते हैं तो खुदा की खुशनुदी के लिए और खुदा की रिजायत के लिए शुरू करते हैं, अम्मा इसके बाद इन्हें कोशिश करनी पड़ती है कि आखिर तक इस नीयत को बाकी रखे और इस इखलास को बाकी रखे कि ये काम सिर्फ खुदा की रिजायत और खुशनुदी के लिए हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया तलबी में और दुनिया के चकाचौन में और पैसे और शोहरत के चक्कर में इनकी नीयत बदल जाती है, और धीरे धीरे ये इखलास जो इनके दिल में खुदा के लिए था वो कम हो जाता है, और फिर ये दुनिया के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, दुनिया के लिए अमल अंजाम देना शुरू कर देते हैं, दुनिया के लिए लोगों को मदद करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह इनके आमाल नाबूद हो जाते हैं और महव हो जाते हैं। इसीलिए अजीज़ों, बिरादरों और ख़ाहरों, नीयत पर तवज्जो रखें कि नीयत सिर्फ खालिसाने खुदा के लिए होना चाहिए, ना सिर्फ अमल के शुरुआत में बल्कि अमल के इंतहा तक, और उसके बाद भी नीयत सिर्फ खुदा की रिजायत के लिए, और रिवॉर्ड भी और जो इसकी जज़ा है वो भी हम सिर्फ़ खुदा से उम्मीद रखें, ना लोगों से और ना इस दुनिया से। इंशाल्लाह बाकी के मतालब अगले चैप्टर में बयान करेंगे। तब तक के लिए इल्तिमा से दुआ, खुदा हाफिज़।